پیش خدمت ہے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی, پیشکش یاسمین جمیل.
السلام علیکم, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر دم رواں ہے زندگی کے ساتھ یاسمین جمیل حاضر ہے. اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تکنیکی تعاون کر رہی ہیں پروڈیوسر گلرخ, انجینئر ویگنر رابرٹس اور فیس بک پر ہماری انٹرن ماریا ناصر. ہمارے پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستان اور بھارت کے لیے, جبکہ دنیا بھر میں ہمارے سننے والوں کے لیے انٹرنیٹ پر براہ راست نشر ہو رہا ہے ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر, جہاں آپ اس کی ریکارڈنگ پروگرام کے بعد کسی بھی وقت سن بھی سکیں گے, شیئر بھی کر سکیں گے اور ڈاؤن لوڈ بھی کر سکیں گے, جبکہ اس کی ریکارڈنگ پروگرام کے بعد مستقل طور پر ہر دم رواں ہے زندگی کے فیس بک پیجز پر پوسٹ کر دی جائے گی, جسے آپ کسی بھی وقت سن بھی سکیں گے, شیئر بھی کر سکیں گے اور ڈاؤن لوڈ بھی کر سکیں گے. ہمارے لنکس ہیں facebook.com/hardamrawahaizindagi اور ہمارا دوسرا لنک ہے facebook.com/yasminjameel.voa.urdu. تو لیجئے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی میں ہماری آج کی مہمان ہیں امریکی ریاست ورجینیا میں ڈرائیونگ کی تربیت دینے اور ڈرائیونگ لائسنس دینے اور دلوانے والے ایک ادارے دی اسٹار ڈرائیونگ اسکول کی مالک اور ایک ماہر ڈرائیونگ انسٹرکٹر ستارہ خان, جو گزشتہ 14 سال سے ہزاروں لوگوں کو ورجینیا کی سڑکوں پر گاڑی چلانے کے لیے انہیں ڈرائیونگ لائسنس دلوانے میں ایک اہم کردار ادا کر چکی ہیں اور ایک اہم کردار ادا کر رہی ہیں. ہماری مہمان ستارہ خان ایک پروفیشنل فوٹوگرافر اور ایک فوٹو اسٹوڈیو ایس کے اسٹوڈیوز کی مالک بھی ہیں اور یہاں ورجینیا, میری لینڈ اور واشنگٹن ڈی سی میں مختلف سماجی, خصوصی طور پر شادی بیاہ کی تقریبات کے موقع پر فوٹو شوٹس بھی کرتی ہیں. اور سوابی پاکستان سے تعلق رکھنے والی اور یہاں ورجینیا میں گزشتہ 16 سال سے مقیم ہماری مہمان ستارہ خان پشاور یونیورسٹی کے آئی ٹی کے شعبے سے ہارڈ ویئر انجینئرنگ کی ڈگری ڈسٹنکشن کے ساتھ حاصل کرنے والی پہلی خاتون بھی ہیں. ہماری مہمان کے تصویری تعارف اور اس پروگرام کو ہمارے فیس بک پیجز پر سننے کے لیے ہمارے لنکس ہیں facebook.com/hardamrawahaizindagi اور ہمارا دوسرا لنک ہے facebook.com/yasminjameel.voa.urdu. ہماری مہمان ستارہ خان اس وقت موجود ہیں ورجینیا سے ٹیلی فون پر ہمارے ساتھ. السلام علیکم ستارہ خان.
وعلیکم السلام.
بے حد شکریہ ہر دم رواں زندگی کے سننے والوں کے لیے اپنے بہت ہی قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکالنے کا. سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اس ہفتے جب سے ہم نے امریکی ٹریفک سسٹم کے حوالے سے آپ کی تصاویر اور آپ کا تعارف اپنے پروگرام کے فیس بک پیجز پر پوسٹ کیا ہے, ہمارے فیس بک پیجز پر ٹریفک بہت بڑھ گئی. بہت زیادہ لوگ امریکی ٹریفک سسٹم میں کردار ادا کرنے والی پاکستانی امریکی خاتون کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں, آپ کو سراہ رہے ہیں, اور بہت سے لوگوں نے تو امریکی ٹریفک سسٹم کے بارے میں آپ کے لیے بہت سے سوال بھی پوسٹ کیے ہیں. اور فیس بک پیجز پر اتنے بہت سے لوگوں کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے ہم آج سے باقاعدہ طور پر شروع کر رہے ہیں اپنے پروگرام میں ایک سیگمنٹ فیس بک کارنر, جس میں ہم شامل کیا کریں گے فیس بک کے اپنے لسنرس کا اپنے مہمانوں کے یا پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک. تو اس کارنر تک پہنچنے سے پہلے ہر دم رواں ہے زندگی کی ٹریفک کا گرین سگنل آن کرتے ہیں اور امریکی ٹریفک کے بارے میں یہ معلوماتی سفر شروع کرتے ہیں ایک بہت ہی جامع سوال سے. اور سوال آپ کے لیے یہ ہے کہ امریکہ کے ٹریفک سسٹم کو دنیا کا ایک بہترین ٹریفک سسٹم کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا اس کی وجہ یہاں کی کشادہ سڑکیں ہیں جہاں گاڑیاں چلانا زیادہ آسان ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہاں کے ٹریفک کے سخت قوانین ہیں یا ان قوانین پر عمل کروانے والی شائستہ اور با اختیار ٹریفک پولیس ہے, یا پھر وہ جرمانے ہیں جو کسی بھی ڈرائیور کو کسی بھی غلطی پر کسی بھی انداز میں ادا کرنے پڑتے ہیں, یا پھر اس میں کسی بھی نئے ڈرائیور کو گاڑی چلانے کی تربیت دے کر اسے ڈرائیونگ لائسنس دلوانے والے ڈرائیونگ اسکول یا ڈرائیونگ انسٹرکٹر کا کوئی ہاتھ ہوتا ہے؟
دیکھیں جی, یہ تو ساری چیزیں اس میں انوالوڈ ہیں, ہمارا زیادہ ہاتھ ہوتا ہے. جب ہمارے پاس آتے ہیں نئے ڈرائیورز تو ان کو ہم سکھاتے ہیں, رولز اینڈ ریگولیشن سکھاتے ہیں ان کو, ان کو بتاتے ہیں کہ ٹریفک میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اور پلس یہاں کے خوبصورتی, مطلب خوبصورت سڑکیں, اور ہر 10 منٹ کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ بل بورڈز لگے ہوتے ہیں کہ آپ نے کہاں جانا ہے, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, ڈائریکشنز ہوتی ہیں. तो एक सिस्टम बना हुआ है और उस सिस्टम में एक फ्लो से ट्रैफिक चल रही होती है
और जो कानून है उन पर अमल दरामद करवाने के लिए पुलिस भी मौजूद होती है।
बिल्कुल बिल्कुल, और काफी स्ट्रिक्ट है,
काफी स्ट्रिक्ट है लेकिन बड़ी शाइस्तगी से। लेकिन ये ट्रैफिक पुलिस आमतौर पर सड़कों पर नजर नहीं आती, एकदम से कहीं से आ जाती है,
बिल्कुल छुपी भी होती है।
अच्छा, या उन्हें जब बुलाया जाता जब आती है।
हाँ जी, वो भी।
अच्छा, लेकिन इस ट्रैफिक को खूबसूरती से चलाने के लिए ज़रूरी होता है, जैसे कि हमने भी कहा कि गाड़ी चलाने की इजाज़त और लाइसेंस हासिल करना, तो जब तक कि लाइसेंस ना मिले ड्राइविंग का, उस वक्त तक आप सड़क पर नहीं आ सकते और उसके लिए कई टेस्ट भी होते हैं, तो उन टेस्टों पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले हमारे सुनने वालों को ये बताइए कि अमरीका में ड्राइविंग लाइसेंस की क्या अहमियत है और क्यों ड्राइविंग लाइसेंस दिलवाने से मुतालिक तरबियती स्कूल्स एक मल्टी मिलियन इंडस्ट्री बन चुकी है।
ड्राइविंग लाइसेंस की यहाँ पे बहुत बड़ी अहमियत है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस अमेरिका में नहीं है तो आपको जॉब भी नहीं मिलती, और पाकिस्तान में इसको शनाख्ती कार्ड कहा जाता है। तो यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस 2-in-1 का काम करता है, वो आपके शनाख्ती कार्ड भी होता है और आपका लाइसेंस भी होता है कि आप अपने व्हीकल को ऑपरेट कर सकें।
तो हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है, मसलन कहाँ कहाँ?
हर जगह एज अ आईडी, अगर आप जॉब के लिए जा रहे हैं तो उनको शो करना पड़ता है, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो वो आपको जॉब नहीं देंगे। फिर आपका एज एन आइडेंटिफिकेशन ये यूज होता है, कहीं पे जाएंगे तो आपको अपनी आईडी तो दिखानी पड़ेगी, तो आप अपना ड्राइवर्स लाइसेंस दिखाते हैं।
तो इसलिए ये जो लाइसेंस है ये बड़ी मुश्किल से हासिल होता है और इसके लिए बड़ी आपको तरबियत लेनी पड़ती है, किसी स्कूल में भी जाना पड़ता है और टेस्ट होते हैं। तो बताइए हमारे सुनने वालों को कि जो ड्राइविंग लाइसेंस के यहाँ अमेरिका में टेस्ट होते हैं कैसे होते हैं, उनकी तैयारी के लिए क्या सभी को जो नए ड्राइवर्स होते हैं किसी स्कूल में दाखिल होना पड़ता है, या घर का कोई फर्द या कोई दोस्त अजीज भी गाड़ी चलाने की तरबियत दे सकता है?
डिपेंड करता है, जैसे आप हमारे जो टीनएजर्स हैं 15.5 साल की उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको स्कूल से ही इनकी एजुकेशन देनी शुरू कर देते हैं, उनको ड्राइवर जेड कहते हैं, ड्राइवर्स एजुकेशन, तो वो स्कूल में ही उसकी तरबियत हासिल करना शुरू कर देते हैं। और जब उनकी 16-16 साल की उम्र में वो फिर हमारे पास आते हैं और फिर हम उनको ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू करते हैं। और जहाँ पे अडल्ट का ताल्लुक है तो अडल्ट हमारे पास भी आ सकते हैं, हम उनको ड्राइवर्स एजुकेशन की तरबियत दे सकते हैं और फिर उनको हम सड़क पे लेके जाके उनको हम सिखाते हैं बाकायदा, बिल्कुल स्क्रैच से उनको बताते हैं कि क्या करना है, ट्रैफिक के कानून क्या है, कैसे गाड़ी को संभालना है। तो डिपेंड करता है कि कौन सी एज ग्रुप का है, क्या कहते हैं, स्टूडेंट, तो हम वहाँ से उनको
उसको सिखाते हैं। लेकिन उससे पहले उनको एक रिटन टेस्ट भी देना पड़ता है ताकि उनके पहले उनकी जो नॉलेज है उसके बारे में, ट्रैफिक सिस्टम के बारे में, गाड़ी चलाने के जो रूल्स हैं, पहले उनको उन्हें सीखना पड़ता है, फिर प्रैक्टिकली उनको लाते हैं सड़क पर सिखाने के लिए।
100% उसको पहले उनको लर्नर्स परमिट दिया जाता है अडल्ट को, जो वो 2 महीने के लिए अपने पास रखते हैं और उन 2 महीनों में वो फिर रूल्स एंड रेगुलेशन सीखते हैं प्रैक्टिकली। पहले तो रिटन टेस्ट हो गया, वो जब पास कर लेते हैं, लर्नर परमिट मिल गया, लर्नर परमिट के बाद वो 2 महीने गाड़ी सीखते हैं और उसके बाद फिर ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट होता है उनका।
और वो टेस्ट पास भी कर सकते हहैं, और कितनी बार वो टेस्ट दे सकते हैं?
3 दफा दे सकते हैं लर्नर परमिट का टेस्ट, जो कि रिटन टेस्ट होता है। अगर 3 दफा फेल हो जाए तो उनको दोबारा हमारे पास आना पड़ता है और 8 घंटे की क्लास लेनी पड़ती है। अच्छा। उसके बाद फिर हम उनको सर्टिफिकेशन देते हैं, वो दोबारा DMV जाके दोबारा से टेस्ट ले सकते हैं।
और DMV वो इदारा है वर्जीनिया का जहाँ के लोग टेस्ट देते हैं ड्राइविंग का।
हाँ जी, ये एब्रिविएशन है डिपार्टमेंट ऑफ मोटर व्हीकल्स।
तो ये जो इदारा है सरकारी होता है या प्राइवेट भी होता है?
DMV तो सरकारी है
और उसे ये इख्तियार हुकूमत की तरफ से मिलता है कि वे लोगों के ड्राइविंग टेस्ट लिए और उन्हें लाइसेंस जारी करे।
बिल्कुल।
अच्छा, जो प्राइवेट इदारे हैं आपकी तरह के जो स्कूल्स हैं वो भी लाइसेंस जारी कर सकते हैं?
हाँ जी बिल्कुल, हम कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, हम मतलब अगर आप देखे जाए तो हम स्टेट के लिए काम करते हैं, स्टेट ने हमें परमिशन दी है कि हम अडल्ट्स का और टीनेजर्स का हम लाइसेंस इशू कर सकते हैं।
तो जो ड्राइविंग स्कूल्स खोलते हैं क्या उनको भी कुछ शराइत पूरी करनी होती है, क्या उनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, कैसे खुलता है कोई ड्राइविंग स्कूल?
बिल्कुल जी, ये आपको कोर्स करना पड़ता है यहाँ, मैंने तो नोवा से किया था, नॉर्दर्न वर्जीनिया कम्युनिटी कॉलेज से, वहाँ पे इनका कोर्स होता है, वो कंप्लीट करते हैं, फिर बाकायदा आपको स्टेट पुलिस जो होती है वो आपका टेस्ट लेती है।
अच्छा,
देखते हैं कि आपको खुद कितनी गाड़ी चलानी आती है, उसके बाद फिर जाके इंस्ट्रक्टर लाइसेंस मिलता है।
अच्छा, और उसके बाद स्कूल खोलने के लिए?
स्कूल खोलने के लिए ये सारे स्टेप्स हैं, तो पहले आप लाइसेंस लेते हैं स्टेट से, उसके बाद फिर अपने आप को बॉन्ड कराते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं, उसके बाद आप अपनी कंपनी भी खोल सकते हैं।
अच्छा, तो ये एक तरह से कंपनी आपने खोली हुई है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले हमारे सुनने वालों को ये बताइए कि अभी तो आपने कहा कि जो स्कूल में ही बच्चों को 15.5 साल की उम्र में सिखाना शुरू कर देते हैं, लेकिन वैसे क्या खास एज लिमिट क्या होती है कोई ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने की?
मिनिमम जो है 15.5 साल की उम्र से ये लोग 15.5 साल की उम्र में ये परमिट ले सकते हैं। फिर वो परमिट उनको 9 महीने रखना पड़ता है, उसको मैच्योर करना पड़ता है, जिस 9 महीने में वो 45 घंटे अपने माँ बाप के साथ गाड़ी सीखते हैं। अच्छा। तो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट 15.5 साल है और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे। मेरे पास अभी 70 साल की एक खातून भी आई थी, उनको भी मैंने सिखाई है, उन्होंने भी ड्राइवर्स लाइसेंस लिया है, तो डिपेंड करता है।
तो आमतौर पर कितने दिन लगते हैं कि एक नया ड्राइवर यहाँ की सड़कों पर गाड़ी चलाता हुआ दाखिल हो जाता है?
एज पे डिपेंड करता है जी। मेरे पास टीनेजर्स आते हैं तो 5 दिन में रेडी हो जाते हैं, कुछ टीनेजर्स आते हैं वो 10 से 11 दिन भी लगा देते हैं, अडल्ट थोड़ा ज्यादा टाइम लगाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब पाकिस्तान इंडिया से आते हैं हमारे स्टूडेंट्स तो वो गाड़ी डिफरेंट साइड पे चलाते हैं सड़क की, तो उनको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है, उनको मतलब कुछ होते हैं स्टूडेंट्स को 10 दिन लग जाते हैं, कुछ को 20 दिन लग जाते हैं, तो डिपेंड करता है कि कौन कितनी जल्दी सीखता है।
जितनी जल्दी। अच्छा, फिर ये कि अमेरिका में तो ऐसे पूरी दुनिया के लोग आबाद हैं और बहुत से लोगों को अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, पढ़नी भी नहीं आती, लेकिन फिर भी वो लाइसेंस ले सकते हैं, तो उसके लिए क्या कोई इशारों की जबान के जरिए वो सीखते हैं?
नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या हुआ है कि 2-3 सालों से इन लोगों ने नए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिए हैं, तो अभी आप अरेबिक में भी टेस्ट दे सकते हैं, इंग्लिश में भी दे सकते हैं, उर्दू में भी दे सकते हैं, यहाँ तक कि पश्तो में भी दे सकते हैं।
अच्छा, वाह।
हाँ जी।
तो कितने ड्राइवर्स हर रोज वर्जीनिया की सड़कों पर आ जाते हैं लाइसेंस लेकर, कुछ अंदाजा?
बहुत हजार, मतलब मैं तो कहूँगी कि हंड्रेड्स में से आते हैं, काफी लोग आते हैं
डेली, और जब जाओ तो वो वहाँ रश लगा हुआ होता है टेस्ट देने के लिए आने वालों के लिए।
बिल्कुल बिल्कुल।
और जरूरी नहीं कि वो सब उस दिन पास भी हो जाएं।
नहीं, ये जरूरी नहीं।
अच्छा, ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो हम उसकी बात भी करेंगे कि मंसूख किस तरह होता है, लेकिन पहले अब आए इस तरफ के जो ड्राइविंग लाइसेंस के बाद जब ट्रैफिक सड़कों पर आप लोग आ जाते हैं तो फिर क्या सिलसिला शुरू होता है और रोल शुरू होता है ट्रैफिक पुलिस का, तो जो इन लाइसेंस वाले ड्राइवर्स को कंट्रोल करते हैं, खासतौर पर उस वक्त जब वो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं या हादसात की वजह बनते हैं, तो अमेरिका में ट्रैफिक पुलिस के क्या इख्तियारात होते हैं?
अमेरिका की पुलिस के इख्तियारात बहुत हैं, वो आपका लाइसेंस रिवोक भी कर सकते हैं, आपसे लाइसेंस छीन भी सकते हैं, आपको अंदर भी करा सकते हैं।
अगर वो ट्रैफिक का जो सिपाही है वो किसी को गलती करते हुए पकड़ ले तो ड्राइवर्स को क्या करना पड़ता है?
वो पहले तो पुल ओवर करना पड़ता है और बिल्कुल आप अपने हाथ स्टीयरिंग पे रखेंगे, उनको विजिबल होना चाहिए और जब वो बात करेंगे तो आपको सुनना चाहिए। पहले आपसे रजिस्ट्रेशन और गाड़ी की कागजात मांगते हैं वो, और गाड़ी से आप उतर नहीं सकते, क्योंकि अगर गाड़ी से उतरे तो फिर आपको वो उसकी बड़ी सजा है।
अच्छा अच्छा, ये उसकी सेफ्टी के लिए ट्रैफिक पुलिस के सिपाही की, सार्जेंट की?
बिल्कुल बिल्कुल, सार्जेंट जो आएंगे आपके पास, अगर जब वो आपको पुल ओवर करते हैं तो वो पहले अपना फिंगरप्रिंट आपकी गाड़ी पे छोड़ते हैं, हमेशा आपकी गाड़ी टच करेंगे।
अच्छा।
हाँ जी, ये इनका एक रूल है।
क्यों करते हैं टच?
क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता सिपाही को कुछ हो गया तो लास्ट आपकी गाड़ी उन्होंने टच की हुई थी।
अच्छा अच्छा,
इस तो वो उनके लिए एविडेंस होता है, वो अपना फिंगरप्रिंट हमेशा आपकी गाड़ी पे छोड़ते हैं।
तो फिर जो भी वो फाइन करता है और उस वक्त फौरी तौर पर आपको अदा करना होता है कि कहीं अदालत में जाकर या ऑनलाइन अदा करना पड़ता है?
जब आपको वो टिकट देते हैं तो उस पे डेट होती है, अदालत की भी तारीख होती है, आप खुद भी फाइन पे कर सकते हैं, टेलीफोन के जरिए भी कर सकते हैं, और आप ऑनलाइन भी, इनकी वेबसाइट है वहाँ पे भी जाके पे कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस चीज के लिए कन्विक्ट हुए थे।
अगर वो पुलिस वाला कोई आप समझते हैं कि उसने आपको गलत फाइन किया है तो फिर वो आप अदालत में जाकर उसके खिलाफ अपील भी कर सकते हैं?
बिल्कुल, आप प्लीड नॉट गिल्टी कर सकते हैं, अपने साथ वकील लेके जा सकते हैं और उसको उसके लिए लड़ भी सकते हैं।
अच्छा, और अगर आप साबित कर दें कि आप पर गलत जुर्माना लगा तो फिर वो कैंसिल भी हो जाते हैं टिकट?
बिल्कुल जी, वो विड्रॉ कर देते हैं।
अच्छा अच्छा, तो इसके अलावा क्या उसूल हैं जिनकी वजह से अमेरिका में सड़कों पर ट्रैफिक के हादसा से बचने में मदद मिलती है?
उसूल बहुत हैं यहाँ पे आपके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। आप फर्स्ट ऑफ ऑल, सड़कें इतनी खूबसूरत हैं आपके, मतलब इट्स वेरी इजी कि यहाँ पे ड्राइविंग बहुत आसान है। और काफी रूल्स एंड रेगुलेशन है जिनसे लोग काफी डर के गाड़ी चलाते हैं, तो इसीलिए हर एक इंसान जो है उसूलों पे ही चल रहा है।
और ज़ाहिर है कि उसकी इतनी तरबियत होती है कि सड़कों पर आने ही नहीं देते जब तक कि वो अच्छी तरह
बिल्कुल
से सीख ना लें। तो
बिल्कुल, उनको रटा लगा के पहले सारा कुछ सिखाते हैं, उसके बाद उनको सड़क पे लाया जाता है।
हर कोई सड़क पर नहीं आ सकता गाड़ी लेकर।
एग्जैक्टली,
तो
बिल्कुल
कैमरों का भी कोई रोल है जो सड़कों पर नस्ब कर दिए जाते हैं ट्रैफिक को कंट्रोल करने में या हादसात
बिल्कुल
को
है,
रोकने में?
बिल्कुल है। यहाँ पे मैं ये नहीं कहूंगी कि हर जगह नहीं है। काफी जगहों पे स्पीडिंग कैमरास लगे हुए हैं, रेडार्स लगे हुए हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। और अगर आप 55 की स्पीड पे, अगर वहाँ पे पोस्ट है कि 55 पे जाना है और आप 65 या 75 पे जा रहे हैं, तो आपकी ऑटोमेटिकली तस्वीर खिंच जाती है लाइसेंस प्लेट की, और जिनके जो भी रजिस्टर्ड हैं उस गाड़ी के, उनके नाम एक खत आ जाता है घर पे, और फिर आपको वो चालान देना पड़ता है।
अच्छा, मोहब्बतनामा घर में पहुंचता है
हाँ जी
कि
बिल्कुल,
ये
मैं कहना नहीं चाह रही थी लेकिन बिल्कुल। हाँ जी
जब खत आपने कहा तो फिर इसलिए। अच्छा, तो अगर कोई मुख्तलिफ, जाहिर आपने कहा है कि सजाएं हो सकती हैं, तो सबसे बड़ी कानून शिकनी किसको कंसिडर किया जाता है यहाँ पर?
फिर से बोलिएगा, सॉरी।
सबसे बड़ी जो कानून शिकनी है, कानून तोड़ने की जो सबसे बड़ी मद है, वो क्या होती है? किसको कहते हैं ये सबसे बड़ी कानून शिकनी ट्रैफिक की?
अब जैसे रेड लाइट क्रॉस कर दिया तो इसको बहुत बड़ा ये बहुत बड़ा एक है कि अपने गलती करती, क्योंकि रेड लाइट क्रॉस करने का मतलब यह है कि आप इनकमिंग ट्रैफिक के साथ मतलब उनको भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, और खुदा ना खास्ता आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो
इसलिए,
लाइट्स को फॉलो करना यहाँ पे बहुत बहुत जरूरी है।
और यही वजह है कि यहाँ पर लोग इतने आदी हो जाते हैं कि रात के 1 बजे 2 बजे भी अगर अकेली सड़क पर गाड़ी खड़ी है और सिग्नल लाल है तो खड़े हैं, जब तक कि वो,
बिल्कुल
कभी कभी तो सिग्नल
बिल्कुल
खराब होता है और वो हरा होके ही नहीं देता, फिर भी खड़े रहते हैं लोग।
हाँ, क्योंकि क्योंकि काफी लोगों को ये नहीं पता कि ट्रैफिक लाइट के सेंसर्स होते हैं, और आप जब तक सेंसर के रीच में नहीं आएंगे गाड़ी, आप वो लाइट जो है वो आपके लिए ग्रीन नहीं होगी।
तो लेकिन वो बेचारे खड़े रहते हैं कि कहीं टिकट ना मिल जाए और कोई किसी किसी
एग्जैक्टली
जानिब से अभी कोई ट्रैफिक पुलिस वाला गाड़ी में पाँ पाँ करता हुआ पहुंच ना जाए। अच्छा, पता उस वक्त लगता
बिल्कुल,
है कि हमने कोई गलती की है जब वो पुलिस वाला पीछे चलना शुरू कर देता है हॉर्न बजाकर।
जब उनकी लाइटें ऑन हो जाती
हाँ,
हैं।
लाइटें ऑन हो जाती हैं।
जी
अच्छा, तो ज्यादातर यहाँ पर आपने क्या देखा कि हादसे किस वजह से होते हैं अमरीका अमरीका की सड़कों पर?
रेस्टलेस नाइट, लोग रात को सोते नहीं है टाइम पे, और सवेरे उनको देर हो रही होती है, सारे काम पे जा रहे होते हैं। आपने देखा भी होगा कभी, आप जब काम पे जा रही होती है तो लड़कियां अमूमन जहाँ पे ट्रैफिक जैम होता है तो अपना मस्कारा लगाना शुरू कर देती
क्योंकि घर में टाइम नहीं होता मेकअप का,
टाइम नहीं
और
होता
आधे
बिल्कुल।
घंटे
मैंने
से
तो ये चीजें जो है ये डिस्ट्रैक्ट करती हैं। बारिश के जब हल्की बारिश पड़ रही होती है वो भी बहुत खतरनाक होती है, वो भी बहुत सारे एक्सीडेंट का कॉज है।
और इसके अलावा आपने ये भी कहा था कि कुछ लोग जो हैं वो टेक्स्ट मैसेज कर रहे होते हैं उस
जी
वक्त।
बिल्कुल, टेक्स्ट मैसेजेस, हैंडहेल्ड, जितने भी डिवाइसेज हैं ये बहुत मतलब बहुत डिस्ट्रैक्टिंग है, और बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं टेक्स्ट मैसेजेस की वजह से और फोन सुनने की वजह से। अभी हमारे वर्जीनिया में नहीं, लॉ नहीं पास हुआ कि टेक्स्ट मैसेजेस से, अंडर अंडर 18 के लिए है लॉ कि अंडर 18 हाथ में फोन अगर उनके हाथ में है और पुलिस ने उनको पुल ओवर कर लिया तो उसकी बहुत बड़ी सजा है, एक रात जेल में भी काटनी है, और $800 फाइन भी है।
800 डॉलर फाइन
हाँ
भी
जी
है और ड्राइविंग लाइसेंस मंसूख भी हो सकता है,
बिल्कुल, हो सकता है वो रिवोक भी कर सकते हैं।
और अगर ड्राइविंग लाइसेंस मंसूख हो जाए तो फिर आप कहीं के नहीं रहते।
बिल्कुल, फिर डिपेंड करता है कि कितने अरसे के लिए गया है, मिनिमम 6 महीने के लिए जाता है, और दोबारा से फिर आपको ड्राइवर्स एजुकेशन और बिहाइंड द व्हील और ये सब कुछ करना दोबारा से पड़ता है, फिर से आप टेस्ट देते हैं, फिर से सारा कुछ जीरो पे आ जाता है।
जीरो पे आ जाता है। ओहो हो,
जी
तो इतनी अहमियत है उस ड्राइविंग लाइसेंस की जिसको इशू करती हैं हमारी मेहमान सितारा खान, जिनका अपना एक स्कूल भी है, बहुत अच्छी इंस्ट्रक्टर भी हैं और बड़े 14 साल से मसरूफ़ हैं वर्जीनिया की सड़कों पर नए ड्राइवर्स को गाड़ी चलाने के लिए लाने में, इनका बहुत बड़ा किरदार है और अभी ये किरदार अदा कर रही हैं। हमारी गुफ्तगू भी जारी है सितारा खान, लेकिन हमारे सुनने वालों को हम एक बार फिर बता दें कि सितारा खान हैं कौन, तो आइए सुनते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन के प्रोग्राम हरदम रवा है जिंदगी में हमारी आज की मेहमान हैं अमरीकी रियासत वर्जीनिया में ड्राइविंग की तरबियत देने और ड्राइविंग लाइसेंस देने और दिलवाने वाले एक इदारे द स्टार ड्राइविंग स्कूल की मालिक और एक माहिर ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर सितारा खान, जो गुज़िश्ता 14 साल से हजारों लोगों को वर्जीनिया की सड़कों पर गाड़ी चलाने के लिए उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस दिलवाने में ایک اہم کردار ادا کر چکی ہیں اور ایک اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ ہماری مہمان ستارہ خان ایک پروفیشنل فوٹوگرافر اور ایک فوٹو اسٹوڈیو ایس کے اسٹوڈیوز کی مالک بھی ہیں، اور یہاں ورجینیا، میری لینڈ اور واشنگٹن ڈی سی میں مختلف سماجی، خصوصی طور پر شادی بیاہ کی تقریبات کے موقع پر فوٹو شوٹس بھی کرتی ہیں۔ اور سوابی پاکستان سے تعلق رکھنے والی اور یہاں ورجینیا میں گزشتہ 16 سال سے مقیم ہماری مہمان ستارہ خان پشاور یونیورسٹی کے آئی ٹی کے شعبے سے ہارڈ ویئر انجینئرنگ کی ڈگری ڈسٹنکشن کے ساتھ حاصل کرنے والی پہلی خاتون بھی ہیں۔ ہماری مہمان کے تصویری تعارف اور اس پروگرام کو ہمارے فیس بک پیجز پر سننے کے لیے ہمارے لنکس ہیں facebook.com/hardamrawahezindagi اور ہمارا دوسرا لنک ہے facebook.com/yasminjameelvoaurdu۔ ہماری مہمان ستارہ خان اس وقت موجود ہیں ورجینیا سے ٹیلی فون پر ہمارے ساتھ۔ جی ستارہ خان، بتائیے ہمارے سننے والوں کو کہ امریکہ کی سڑکوں پر ٹریفک کے دوران پیدل چلنے والوں کا کتنا احترام ہوتا ہے؟
بہت زیادہ، پیڈیسٹرینز کا تو یہاں پہ لا ہے باقاعدہ کہ ہمیں ان کے لیے ییلڈ کرنا ہے، ہمیں ان کے لیے ٹریفک بالکل رکنی ہے،
اور وہ باقاعدہ وہ سگنل بھی روک سکتا ہے پیدل چلنے والا، جو نشان لگے ہوئے ہوتے ہیں۔
بالکل، ان کے لیے باقاعدہ نشان لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ فٹ پاتھ سے نیچے اتر گئے تو آپ کو گاڑی روکنی ہے ان کے لیے، کیونکہ ان کا رائٹ آف وے ہے۔
اسی طرح جو اسکول بسیں ہیں، جو فائر گاڑیاں ہیں اور ایمبولینسیں ہیں، ان کے لیے بھی خاص رولز ہیں؟
بالکل بالکل، جیسے ہی آپ سنتے ہیں ان کے سائرن کی آواز تو آپ کو ان کے لیے سڑک بالکل کلیئر کرنی پڑتی ہے، اور اگر نہیں کی تو اس کا بھی پینلٹی ہے۔
اور اسکول بسوں کے لیے جو خاص اہتمام کیا جاتا ہے وہ بتائیے ہمارے سننے والوں کو۔
اسکول بسوں کے لیے بہت اچھا اہتمام ہے، کیونکہ وہاں اس میں بچے ہوتے ہیں اور ان کا ایک اسٹاپ سائن ہوتا ہے، جیسے اسکول بس رکتی ہے آپ کا اسٹاپ سائن آن ہو جاتا ہے، ریڈ لائٹس آن ہو جاتی ہے اسکول بس پہ، اور آپ کو 100 فٹ کی دوری پہ گاڑی روکنی پڑتی ہے، اور گاڑی بالکل آپ ہلا نہیں سکتے جب تک ڈرائیور وہ اسٹاپ سائن کی لائٹ نہ آن آف کر دے اور اسٹاپ سائن ہٹا نہ دے، تو آپ گاڑی بالکل موو بھی نہیں کر سکتے۔
اور اس ڈرائیور کے بھی بڑے اختیارات ہوتے ہیں جو اسکول بس چلا رہا ہوتا ہے؟
بالکل ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے پاس ریڈیو ہوتا ہے، وہ کبھی بھی پولیس کو اطلاع کر سکتا ہے۔
اور وہ خود بھی کوئی فائن کر سکتا ہے؟
نہیں، وہ خود تو فائن نہیں کر سکتا، لیکن وہ آپ کی شکایت ضرور کر سکتا ہے، اور ان کے پاس کیمراز ہوتے ہیں تو وہ آپ کو اسی وقت آپ کا اسنیپ شاٹ لے لیتے ہیں یا آپ کی ویڈیو بنا لیتے ہیں۔
اچھا، بہت سے شہر ہیں یہاں امریکہ میں جہاں کے ہارن بجانا منع ہے، تو پھر کیسے وہاں پر کیسے انتباہ کر سکتے ہیں اگلے ڈرائیور کو یا پچھلے ڈرائیور کو ہارن کے بغیر؟
ہارن یہاں پہ بہت کم بجاتے ہیں، بلکہ بجاتے ہی نہیں ہیں، غصے میں کبھی آ کے کوئی اگر ہارن بجاتے تو دیٹس اباؤٹ اٹ، ورنہ یہاں پہ ہارن کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اتنا ٹریفک سسٹم جو ہے اتنا سسٹمیٹیکلی چلتا ہے کہ یہاں پہ آپ کو ہارن کی کبھی ضرورت پڑتی ہی نہیں ہے، اور یہاں پہ لوگ بھی بہت پیشنٹ ہیں، بڑی پیشنٹ، مطلب وہ انتظار کرتے ہیں، اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں، تو ہارن بجانے کی کوئی ضرورت پڑتی نہیں ہے۔
اچھا، اور اگر جو یہاں کے جو سڑکوں پر جو سائنز ہوتے ہیں، آپ ان کو کیسے کمپیئر کریں گی پاکستان جیسے ملکوں کے، جو دوسرے ملک ہیں ان میں جو ٹریفک کے سائنز ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں ہوتے جتنے یہاں پر ہوتے ہیں، تو کوئی خاص سائنز جن کا آپ اس پر ذکر کرنا چاہیں جو دوسرے ملکوں میں نہیں ہوتے؟
مطلب یہاں پہ سائنز ہر چیز کے لیے ایک سائن ہے، اگر آپ کو ایگزٹ لینا ہے تو 10 دفعہ آپ کو وہ ایگزٹ یاد کرایا جائے گا تاکہ آپ گھومے نہ، ہر چیز کا، اگر ہاسپٹل ہے تو اس کا ایک 10 دفعہ سائن لگا ہوا ہوگا کہ اس طرف آپ کا ہاسپٹل ہے، یا کوئی بھی چیز آپ یہاں پہ گم ہی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ سائن ہر قدم پہ آپ کے لیے سائن ہے۔ تو میں کہوں گی کہ کسی اور ملک میں اگر میں کبھی گئی بھی ہوں تو میں نے اتنے سائنز نہیں دیکھے، اور میرا خیال ہے کہ یہ سائن کی وجہ سے ہی ہم لوگ نہ گھومتے ہیں اور نہ ٹریفک جام ہوتا ہے، نہ کوئی غلط یو ٹرن مار رہا ہوتا ہے،
اور اس کی وجہ ایک یہ کہ پھر جرمانے اور جیب خالی بھی ہوتی ہے اگر آپ
ایگزیکٹلی ہاں جی بالکل۔
اچھا، آپ کو تو اتنے عرصے سے آپ ڈرائیونگ لائسنس دینے میں مدد کر رہی ہیں، بہت سارے بچوں کی بھی کی ہوگی، یوتھ کی بھی کی ہوگی، بڑوں کی بھی کی ہوگی، تو کوئی واپس بھی آیا؟ کچھ جن کو آپ نے لائسنس دیا ان کے لائسنس منسوخ بھی ہوئے اب تک کبھی؟
نہیں، ابھی تک میرے پاس تو نہیں آئے، لیکن ابھی تک الحمدللہ कोई वापस, मेरे पास क्लाइंट्स बहुत आए, रेफरल्स बहुत आए हैं. मेरा पहला पहला जो क्लाइंट था, बच्चा था, उनका आज से 14 साल पहले की बात कर रही हूँ, तो उनके अब आगे से बच्चे हो चुके हैं. दे कीप इन टच, अच्छे अच्छे लफ्जों में याद करते हैं, आते हैं, रेफरल्स देते हैं. लेकिन आई डोंट थिंक कि कोई अभी तक ऐसा कोई क्लाइंट मेरे पास वापस आया जिसका लाइसेंस मंसूख हो गया हो.
अच्छा अच्छा, बिल्कुल. तो आपने जब ये स्कूल खोला तो किन किन मराहिल से गुजर कर आपने इस स्कूल को खोला?
बैक देन बहुत मुश्किल था, आसान नहीं था. पढ़ना भी था, प्रेजेंटेशंस भी देनी थी, और कुछ पता भी नहीं था कि कहाँ जाएं, क्या करें. तो इट वाज काफी मुश्किलात भी हुई, लेकिन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह. और
लेकिन आपने अपने लिए ड्राइविंग का स्कूल का शोभा ही क्यों चुना, कोई और क्यों? आप तो हार्डवेयर इंजीनियर में, आप इंजीनियरिंग की आपने डिग्री ली थी पेशावर यूनिवर्सिटी से, और आपने सोशियोलॉजी भी पढ़ी हुई थी, लेकिन आपने उन सबको छोड़कर ड्राइविंग स्कूल को अपनाया, तो क्या वजह? बहुत माहिर थी गाड़ी चलाने में आप?
हाँ, मुझे हमेशा घर से डांट भी पड़ती थी कि मैं गाड़ी बहुत तेज चलाती थी, लेकिन अब मैं नहीं चलाती हूँ क्योंकि मैं इंस्ट्रक्टर बन चुकी हूँ और अपना लाइसेंस नहीं गवा सकती. छोटी उम्र में ही गाड़ी चलानी सीख ली थी, मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने सिखाई थी. तो लेकिन उसके बाद जब आईटी में काम कर रही थी मैं, तो वहाँ पे 9/11 के बाद फिर हम लोग जॉब्स चली गई, बहुत मार्केट डाउन हो गई थी, आईटी में जॉब नहीं मिल रही थी. तो हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने बताया, तो बस इसी शोबे में फिर शुरू हो गए. और प्लस न्यूयॉर्क से यहाँ पे जब मैं माइग्रेट होके आई, तो देखा यहाँ पे कम्यूट का जो मसला बहुत ज्यादा था. कि बसें इतनी नहीं है, टैक्सी इतनी नहीं है, टैक्सी है भी तो बहुत महंगी है. और हमारी पाकिस्तान की जो खवातीन हैं, अगर उनको ड्राइविंग चलानी नहीं आती तो देर पैरालाइज्ड, वो नहीं जा सकती, ग्रोसरी शॉपिंग नहीं कर सकती, अपने दिन के काम नहीं, उनके रुके रहते हैं जब तक उनके स्पाउस वापस नहीं आते. तो इसीलिए मेरा ख्याल है कि इट वाज अ गुड डिसीजन जो अभी तक चल रहा है, बहुत सारी खवातीन का हेल्प भी हुई.
तो खवातीन इंस्ट्रक्टर्स का क्या रेशो है यहाँ पर अमेरिका में, और खवातीन जो स्कूल जो ड्राइविंग स्कूल चला रही हैं उनमें खवातीन कितनी होती हैं?
बहुत कम.
अच्छा अच्छा.
हाँ जी, बहुत कम.
और इंस्ट्रक्टर्स भी कम होती हैं?
हाँ, इंस्ट्रक्टर्स जो हैं खवातीन हैं यहाँ पे, बहुत हैं. बहुत तो मैं नहीं कहूँगी कि हैं, लेकिन बहुत कम हैं.
हाँ, तो ये जो कहते हैं कि ड्राइविंग स्कूल जो है एक बहुत मल्टी मिलियन इंडस्ट्री बन चुकी है, तो इसमें जो कामयाब बिजनेस का सबसे अहम रास्ता क्या आप समझती हैं, किस किस शोबे में यहाँ पर ये जॉब हो सकती है या बिजनेस हो सकता है या कामयाबी हो सकती है?
ड्राइविंग स्कूल के लिहाज से ये, इसको मैं जॉब नहीं कहूंगी, मतलब ये आप खुद अपना एक इदारा खोल लेते हैं और फिर अपने लिए ही काम करते हैं, यूर ओन बॉस. आप इसको जॉब कहना, जॉब आई डोंट नो कि किस लिहाज से इसको मैं जॉब,
बिजनेस कह सकते हैं इसको?
हाँ, बिजनेस है ये. हाँ जी.
तो
जो कि हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं डीएमवी के साथ, और डीएमवी मतलब डीएमवी हमारे एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उनके सर्टिफाइड हैं हम लोग.
तो नहीं, लेकिन क्या तरीका क्या होता है, कैसे आप ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स आपके पास आते हैं, आप अपने आप को कैसे प्रमोट करती हैं?
प्रमोशन देखिए, हमारा वर्ड ऑफ माउथ ज्यादा होता है, रेफरल ज्यादा होते हैं. हाँ जी, गूगल पे, येल्प पे, ये चीजें तो चलती रहती हैं, लेकिन ऑब्वियसली अब हम लोग मार्केट में हैं, लोग जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारा रेफरल प्रोग्राम ज्यादा चलता है.
अच्छा, यानी जो एक ने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया, और उस एरिया में जब भी कोई नया ड्राइवर शुरू हुआ सीखने के लिए, तो आपको, आपके पास वो पहुंच जाता है?
बिल्कुल आ जाता है.
अच्छा, तो बेहद शुक्रिया सितारा खान. एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं.
हरदम रवा है जिंदगी, वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से हर जुमे को नशर होने वाला प्रोग्राम. हमारे मेहमानों से फेसबुक पर सवाल पोस्ट करने के लिए हमारा लिंक है facebook.com/हरदम रवा है जिंदगी, और हमारा दूसरा लिंक है facebook.com/yasmeenjameelvoaurdu. वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन के प्रोग्राम हरदम रवा है जिंदगी में हमारी आज की मेहमान हैं अमरीकी रियासत वर्जीनिया में ड्राइविंग की तरबियत देने और ड्राइविंग लाइसेंस देने और दिलवाने वाले एक इदारे दी स्टार ड्राइविंग स्कूल की मालिक और एक माहिर ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर सितारा खान,
जो गुज़िश्ता 14 साल से हज़ारों लोगों को वर्जीनिया की सड़कों पर गाड़ी चलाने के लिए उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस दिलवाने में एक अहम किरदार अदा कर चुकी हैं और एक अहम किरदार अदा कर रही हैं। हमारी मेहमान सितारा खान एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर और एक फोटो स्टूडियो एस के स्टूडियोज की मालिक भी हैं और यहाँ वर्जीनिया, मैरीलैंड और वाशिंगटन DC में मुख्तलिफ समाजी, खुसूसी तौर पर शादी ब्याह की तकरीबात के मौके पर फोटो शूट्स भी करती हैं। और सवाबी पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाली और यहाँ वर्जीनिया में गुज़िश्ता 16 साल से मुकीम हमारी मेहमान सितारा खान पेशावर यूनिवर्सिटी के IT के शोबे से हार्डवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री डिस्टिंक्शन के साथ हासिल करने वाली पहली खातून भी हैं। हमारी मेहमान के तस्वीरी तारुफ और इस प्रोग्राम को हमारे फेसबुक पेजेस पर सुनने के लिए हमारे लिंक्स हैं facebook.com/hardamrawahezindagi और हमारा दूसरा लिंक है facebook.com/yasminjameelvoaurdu। हमारी मेहमान सितारा खान इस वक्त मौजूद हैं वर्जीनिया से टेलीफोन पर हमारे साथ।
जैसे कि हमने कहा कि हमने आज से कोशिश कर रहे हैं कि एक फेसबुक कॉर्नर हम शुरू कर दें, एक प्रोग्राम जिसमें हम जो फेसबुक पर हमारे लिसनर्स हैं वो हमारे मेहमानों के लिए जो सवाल पोस्ट करते हैं उनको हम प्रोग्राम में शामिल करना चाहते हैं। तो लीजिए हम ट्रैफिक के बारे में इस मालूमती सफ़र को ब्रेक लगाते हैं, शामिल करते हैं अपने फेसबुक के लिसनर्स के सवालों को आज के प्रोग्राम में।
ठीक है,
जी फेसबुक कॉर्नर में हमारा सबसे पहला सवाल पोस्ट किया जमील मलिक ने हरदम रवाया ज़िंदगी के फेसबुक पेज पर कि क्या अमेरिका में ट्रैफिक को पुलिस कंट्रोल करती है या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम?
पुलिस ऑब्वियसली,
और ज़ाहिर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यही है कि वो सिग्नल्स वगैरह लगे हुए हैं, इशारे लगे हुए हैं।
सिग्नल्स तो लगे हुए हैं लेकिन कभी कभी आपको पता है कि लोग इशारे भी तोड़ देते हैं।
हाँ बिल्कुल। शाकिरुल्ला जान ने पूछा कि क्या अमेरिका में कोई ऐसा रियासत या कोई ऐसा शहर है जिसका ट्रैफिक सिस्टम और कानून पाकिस्तान के ट्रैफिक सिस्टम के साथ मिलते जुलते हों?
नहीं।
और जहाँ जेब ने लिखा कि पाकिस्तान में कारें और मोटरसाइकिलें सड़कों पर बहुत रश करती हैं, तो अमेरिका में क्या प्राइवेट गाड़ियों के रश को कम करने का कोई तरीका है?
प्राइवेट गाड़ियों नहीं, रश को कैसे, कहाँ से कम होगा? मतलब सारे सड़क पे आते हैं, मोटरसाइकिल्स की अपनी लेन होती है, गाड़ियों की अपनी लेन होती है, रश आवर तो हर जगह होता है, इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं?
उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके कंट्रोल करने का तरीका यह है कि सड़कें और बना दो जो यहाँ बनती रहती है।
हाँ, जो मोटरवेज हैं या यहाँ पे जो हाईवेज हैं उनकी लेन एक्सटेंड कर दें।
हाँ, तो बस यही तरीका है रश को कम करने का, लेकिन जिसने आना है उसने तो सड़क पर आना है।
बिल्कुल।
और रश को सबने बर्दाश्त करना है जब रश का वक्त होगा।
Exactly. तो हाँ जी।
अच्छा, सरदार अरशद हलीम ने पूछा कि क्या सिर्फ कुशादा सड़कें या कवानीन ही बेहतरीन ट्रैफिक के लिए काफी हैं?
100%
ठीक,
कवानीन होंगे तो ट्रैफिक कंट्रोल होगा ना, कवानीन नहीं होंगे तो ट्रैफिक कहाँ कंट्रोल होगा? और सड़क सही होगी तो एक्सीडेंट्स नहीं होंगे, पॉट होल्स होंगे तो ऑब्वियसली गाड़ी का एक्सीडेंट होगा, गाड़ी उछलेगी, बहुत सारी चीजें डिस्ट्रैक्ट होती हैं। तो
लेकिन मेरा ख्याल है वो ये पूछना चाह रहे हैं कि कवानीन की मौजूदगी नहीं बल्कि उन पर अमल दरामद भी जरूरी है कि सिर्फ कवानीन की मौजूदगी ही जरूरी है?
दोनों
है। अच्छा, मियां मोहम्मद शेख ने मुल्तान से पूछा कि क्या अमेरिका के ट्रैफिक रूल्स इतने सादा या इतने मुश्किल हैं कि पाकिस्तान में नाफिज नहीं हो सकते?
बिल्कुल हो सकते, कोई सुने तो तब।
नसीर वानी ने भारतीय कंट्रोल के कश्मीर से पूछा कि अगर कोई ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो उसे क्या सजा मिलती है? इसके कुछ जवाब तो आप दे चुकी हैं, कुछ और बताइए।
डिपेंड करता है कि आप किस चीज के लिए कन्विक्ट हुए हैं। $25 का भी आपको टिकट मिल सकता है और आपको 500 और 1000 का और 5000 का भी मिल सकता है, तो डिपेंड करता है कि आपने क्या गलती क्या थी।
तो स्पीड से ज्यादा ड्राइविंग करने की क्या सजा होती है इन्होंने पूछा है, और 18 साल से कम उम्र के नौजवान क्या गाड़ी चला सकते हैं? इसका जवाब
बिल्कुल चला सकते हैं। मैंने पहला सवाल मिस हो गया मेरे से,
ज्यादा यानी स्पीड से ज्यादा ड्राइविंग करने की क्या सजा होती है?
रेकलेस, वो तो रेकलेस ड्राइविंग है, आपके रिकॉर्ड पे 6 पॉइंट आ जाते हैं जो कि 11 साल रहते हैं आपके रिकॉर्ड पे, और 18 साल की उम्र से बिल्कुल कम बच्चे गाड़ी चलाते हैं। अभी मैं पहले भी इस बारे में हम लोग बात कर चुके थे कि 15 साल की उम्र में बच्चे यहाँ पे ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं अपनी ड्राइविंग की।
लेकिन वो लर्निंग लाइसेंस लेते हैं जिसमें किसी ना किसी के साथ बैठ कर गाड़ी चलाते हैं, अकेले नहीं चला सकते वो।
हाँ,
और आरजे मलिक ने पूछा है कि अमेरिका में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ओवरलोडिंग को कैसे कंट्रोल किया जाता है।
यहाँ पे ओवरलोडिंग नहीं होती, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत मतलब सिस्टमेटिकली चलती है और जितने पैसेंजर वहाँ पे आ सकते हैं उतने ही पैसेंजर वो बिठाएंगे, उससे एक पैसेंजर ज्यादा ना कम।
बल्कि ज्यादातर तो ये जो पब्लिक की गाड़ियाँ हैं वो खाली ही नजर आती हैं, बहुत कम लोग
खाली ही नजर आते हैं। बिल्कुल,
यहाँ पर हर आदमी के पास अपनी आमतौर पर गाड़ी होती है।
बिल्कुल,
गाड़ी उसी तरह है जिस तरह एक जरूरत की चीज यहाँ पर है कोई।
हाँ जी, ये यहाँ पे वांट नहीं है, यहाँ पे नीड है।
यहाँ पर नीड है और नीड जो है उसको पूरा करना बहुत आसान होता है कि गाड़ियाँ बड़ी आसान किस्तों में नई पुरानी जितनी भी आपकी इस्तेमाल हो आप खरीद सकते हैं।
बिल्कुल ऐसा ही है।
लोन भी मिल जाते हैं तो गाड़ी को खरीदना कोई इतना बड़ा इशू नहीं बनता यहाँ पर। अच्छा, मुंतजर सबजार अली ने गुलगाम भारतीय कंट्रोल कश्मीर से पूछा कि क्या अमेरिका में ये जरूरी है कि ड्राइविंग लाइसेंस किसी स्कूल से ही हासिल किया जाए।
नहीं, जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है, आप खुद भी सीख सकते हैं। लर्नर परमिट ले लें, 2 महीने वो आपको देते हैं, आप गाड़ी खुद किसी के साथ भी लाइसेंस ड्राइवर हो, एज लॉन्ग एज के जिसे आप सीख रहे हैं वो लाइसेंस ड्राइवर है।
अगर ड्राइविंग लाइसेंस ना हो या रिन्यू में देर हो जाए तो क्या सजा होती है, इन्हीं ने पूछा है सबजार अली।
हाँ जी, अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है और रिन्यू नहीं हुआ तो आपको दोबारा से लर्नर परमिट लेना पड़ेगा, दोबारा से रिटन टेस्ट देना पड़ेगा।
और रिन्यू में देर हो जाए तो क्या सजा है कोई?
नहीं, सजा कोई नहीं है।
हाँ
जी,
तो नहीं, लेकिन अगर आपके पास लाइसेंस एक्सपायर्ड है और आप उसको लेकर गाड़ी चला रहे हैं तो कोई सजा नहीं मिलेगी?
उसको लेके अगर चला रहे हैं तो बिल्कुल सजा है, वो फिर ड्राइविंग विदाउट अ लाइसेंस में कन्विक्शन होती है और उसकी सजा फिर डिपेंड करता है कि आप रेजिडेंशियल एरिया में चला रहे थे कि कमर्शियल एरिया में या हाईवे पे चला रहे थे, तो वो फिर डिपेंड करता है कि कहाँ पे थे, कहाँ पे पकड़े गए, तो उसकी फिर डिफरेंट सजाएं हैं।
और इन्होंने एक सवाल ये भी लिखा था कि क्या लोग ट्रैफिक के फाइन को ऑनलाइन अदा कर सकते हैं?
बिल्कुल कर सकते हैं।
अच्छा, सरगोधा से सोहेल कासिम ने पूछा कि क्या अमेरिका में गधा गाड़ी क्रॉसिंग होती है?
जी बिल्कुल होती है।
कैसे होती है बताइए ना, अमेरिका में गधे गाड़ियां होती हैं?
हाँ, अमेरिका में भी बिल्कुल होती है क्योंकि सबब एरियाज में फार्म्स हैं और यहाँ पे एक आमिश कम्युनिटी भी है जहाँ पे गाड़ियां नहीं वो लोग इस्तेमाल करते, वो लोग अभी भी टांगे और घोड़े और ये सवारियों पे कम्यूट करते हैं, तो बिल्कुल वहाँ पे गधा गाड़ी का या घोड़ा गाड़ी का या किसी भी ट्रेलर का वहाँ पे साइन जरूर होता है।
नहीं तो वो क्यों उन्होंने इस चीज को अपनाया हुआ है अभी तक?
बस वो अपनी हिस्ट्री को प्रिजर्व करना चाहते हैं और वो उनको टेक्नोलॉजी से कोई दिलचस्पी नहीं है, तो वहाँ पे लाइटें भी नहीं है आज तक, उधर लालटेन चलते हैं।
तो ये कहाँ है, ये एरिया किधर है?
ये फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया के अराउंड यहाँ पे है।
अच्छा, इसे तो देखना चाहिए ना, अभी तक हम बैरू में से।
बहुत इंटरेस्टिंग जगह है।
अच्छा, इस्लामाबाद से अदनान अहमद ने पूछा है कि अमेरिका में सालाना कितने ट्रैफिक के हादसे होते हैं?
हाँ, ये डिपेंड करता है, अभी 2014 में फेटल क्रैशेस जो हुए हैं 30,000 के करीब हुए हैं और 2013 में भी 30,000 था।
अच्छा अच्छा, इतनी एहतियात हाँ के बावजूद, इतने अच्छे सिस्टम के बावजूद, तो क्या सबसे बड़ी क्या वजूहत होती है? कुछ तो आपने बता दी थी, तो क्या यही वजूहत इन ट्रैफिक हादसात की हैं?
स्नो है जी, स्नो है, आइस है, लोग यहाँ पे 4x4 ले लेते हैं, समझते हैं कि इनको कुछ नहीं हो सकता, फिर उनको गाड़ी हैंडल करनी आती नहीं है, हार्ड ब्रेकिंग करते हैं तो उससे गाड़ी स्लिप होती है, स्किड होती है, खुद का अपना भी नुकसान करते हैं, लोगों का भी करते हैं।
अच्छा 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 अच्छा, फिर इन्होंने ये पूछा, अदनान साहब ने पूछा कि क्या एक्सीडेंट में अगर कोई फौत हो जाए तो क्या उसके रिश्तेदार सजा माफ कर सकते हैं या सिर्फ रियासती जज ही सजा माफ कर सकता है?
रियासती जज करते हैं, सारे फैसले वहाँ पे होते हैं।
अच्छा अच्छा अच्छा, और ट्रैफिक सर्जेंट के उन्होंने पूछा अदनान साहब ने कि इख्तियारात क्या होते हैं?
उनके पास हर चीज का इख्तियार है, वो तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस तक ले सकते हैं, आपकी गाड़ी कंपाउंड कर सकते हैं।
तो ये थे समीउल्ला ने चित्राल से पूछा कि क्या अमेरिका में ऑटो रिक्शा टैक्सी वगैरह के लिए कोई रूल्स हैं जिनके तहत वो पैसेंजर्स को उठाते हैं या उनके लिए कोई नो एंट्री एरिया भी है?
बिल्कुल है, रिक्शा तो यहाँ पे नहीं होते, टैक्सी के लिए काफी जगह है जहाँ पे आप टैक्सी नहीं खड़ी कर सकते या वहाँ पे आप टैक्सी नहीं लेके जा सकते। अच्छा। आपके पास बाकायदा लाइसेंस होना चाहिए टैक्सी का और वहाँ पे आपने परमिशन लेनी है, तब जाके आप वहाँ से पैसेंजर्स को उठा सकते हैं और ड्रॉप ऑफ कर सकते हैं।
और उनके लिए कोई नो एंट्री एरिया है?
نو انٹری ایریاز بھی ہیں, مجھے ایز سچ معلوم نہیں ہے, لیکن ہیں کافی جگہوں پہ ٹیکسیاں نہیں جا سکتی.
اچھا,
یہاں تک کہ ریزیڈینشیل ایریاز ہیں وہاں پہ آپ ٹیکسی کھڑی نہیں کر سکتے. اگر آپ وہاں پہ رہ رہے ہیں تو ٹیکسی آپ کہیں اور کھڑی کر کے وہاں آپ ٹیکسی نہیں لے کے آ سکتے.
تو بے حد شکریہ ہماری آج کی مہمان ستارہ خان, آپ نے ہمارے فیس بک کے جو لسنرز تھے ان کے سوالوں کے جوابات دیے.
ہر دم رواں ہے زندگی, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام. اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں کامیاب پاکستانی امریکیوں سے. ہمارے مہمانوں سے فیس بک پر سوال پوسٹ کرنے کے لیے ہمارا لنک ہے facebook.com/ہردم رواں ہے زندگی. پیشکش یاسمین جمیل. ہر دم رواں ہے زندگی, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام. اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں کامیاب پاکستانی امریکیوں سے. کامیاب پاکستانی امریکیوں کے تجربات آپ کی زندگی میں بھی کامیابی کا کوئی پیغام لا سکتے ہیں. ہمارے مہمانوں سے فیس بک پر سوال پوسٹ کرنے کے لیے ہمارا لنک ہے facebook.com/ہردم رواں ہے زندگی. اور ہمارا دوسرا لنک ہے facebook.com/یاسمین جمیل VOA اردو. سننا نہ بھولیے ہر جمعے کو پاکستان میں رات 10 سے 11 اور بھارت میں رات 10:30 سے 11:30 بجے تک. پیشکش یاسمین جمیل. وائس آف امریکہ واشنگٹن کے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی میں ہماری آج کی مہمان ہیں امریکی ریاست ورجینیا میں ڈرائیونگ کی تربیت دینے اور ڈرائیونگ لائسنس دینے اور دلوانے والے ایک ادارے دی اسٹار ڈرائیونگ اسکول کی مالک اور ایک ماہر ڈرائیونگ انسٹرکٹر ستارہ خان, جو گزشتہ 14 سال سے ہزاروں لوگوں کو ورجینیا کی سڑکوں پر گاڑی چلانے کے لیے انہیں ڈرائیونگ لائسنس دلوانے میں ایک اہم کردار ادا کر چکی ہیں اور ایک اہم کردار ادا کر رہی ہیں. ہماری مہمان ستارہ خان ایک پروفیشنل فوٹوگرافر اور ایک فوٹو اسٹوڈیو ایس کے اسٹوڈیوز کی مالک بھی ہیں اور یہاں ورجینیا, میری لینڈ اور واشنگٹن ڈی سی میں مختلف سماجی, خصوصی طور پر شادی بیاہ کی تقریبات کے موقع پر فوٹو شوٹس بھی کرتی ہیں. اور ثوابی پاکستان سے تعلق رکھنے والی اور یہاں ورجینیا میں گزشتہ 16 سال سے مقیم ہماری مہمان ستارہ خان پشاور یونیورسٹی کے آئی ٹی کے شعبے سے ہارڈ ویئر انجینئرنگ کی ڈگری ڈسٹنکشن کے ساتھ حاصل کرنے والی پہلی خاتون بھی ہیں. ہماری مہمان کے تصویری تعارف اور اس پروگرام کو ہمارے فیس بک پیجز پر سننے کے لیے ہمارے لنکس ہیں facebook.com/ہردم رواں ہے زندگی اور ہمارا دوسرا لنک ہے facebook.com/یاسمین جمیل VOA اردو. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ستارہ خان, آپ سے اب ہم بات کریں گے آپ کی زندگی کے دوسرے پروفیشن کی, اور وہ ہے فوٹوگرافی کا. تو ڈرائیونگ اسکول اور فوٹوگرافی دو مختلف شعبے ہیں. آپ کا پہلا شعبہ ڈرائیونگ اسکول ہے یا فوٹوگرافی؟
فوٹوگرافی جو تھی وہ میری ہابی تھی اور اس کو پروفیشن, تھوڑا ہلکا پھلکا پروفیشن بھی بنا لیا.
اچھا, تو کیسے بن گیا یہ پروفیشن؟
شوق تھا, شوق تھا, بس مجھے بچپن سے ہی شوق تھا پکچر کھینچنے کا. تو آبویسلی امریکہ میں آپ کو پتا ہے کہ ایک جاب سے گزارا نہیں ہوتا, اس ڈرائیونگ اسکول کے ساتھ ساتھ کیونکہ ویکینڈ پہ میں فری ہوتی تھی تو میں نے ساتھ میں ہلکی پھلکی فوٹوگرافی بھی شروع کر دی.
اچھا اچھا, تو یہ اب آپ کا ایک سائڈ بزنس ہے ایک طرح سے, مین بزنس آپ کا اسکول ہی ہے؟
ہاں, مین بزنس میرا ڈرائیونگ اسکول ہے.
اچھا, تو کیا اس کا اسکوپ ہے اس شعبے میں خواتین کا خاص طور پر, اور کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ایسا بزنس ہے کہ جس سے پورا گھر چل سکے؟
بالکل چل سکتا ہے اگر آپ اس کو پوری طریقے سے ٹائم دیں. بہت ٹائم کنزیومنگ ہے یہ کام, तो अगर आप पूरे तरीके से इसको टाइम दें तो ज़रूर बिल्कुल चल सकता है।
तो इससे बेहतर कि हम आपसे पूछें कि आप किस किस्म की फ़ोटोग्राफी करती हैं। इफ्तखार साहब कराची से हमारे साथ टेलीफोन पर मौजूद हैं, वो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, तो देखते हैं इफ्तखार साहब क्या पूछ रहे हैं इस वक्त। जी इफ्तखार साहब,
आप अपने सीखने वालों को और जो सुनने वाले हैं वो भी इससे मुस्तफीद हों, वो ये है कि टायर में हवा जो है वो मैक्सिमम अगर आपने 35 पाउंड रखते हैं तो इसको 5 पाउंड कम रखें। उसमें फायदा ये होता है कि गाड़ी की ब्रेक जो है वो बेहतर तरीके से लगती है और उससे चांसेस बहुत कम होते हैं।
तो सितारा खान, आप तायद करेंगे इनकी स्टिप से?
बिल्कुल, हमारे हर गाड़ी पे एक स्टिकर होता है ड्राइविंग साइड पे। अगर आप दरवाजा खोलें तो नीचे स्टिकर होता है और उस पे कोल्ड टायर प्रेशर एंड वार्म टायर प्रेशर दिया जाता है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, सर्दियों में हम टायर प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा रखते हैं सर्दियों में।
अच्छा।
क्योंकि टायर का प्रेशर कम हो जाता है ठंड में, तो उसमें हमें ज्यादा रखना पड़ता है। और गर्मियों में हम लोग 2-3 पाउंड उसका PSI जो है वो हम कम रखते हैं।
तो बेहद शुक्रिया आसिफ, आपने जहांगीरा से टेलीफोन किया था और अब गुफ्तगू को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी हम जिक्र कर रहे थे आपकी दूसरे शोबे का, आपके फोटोग्राफी करती हैं आप, तो शादी ब्याह की तकरीबात को आप कहती हैं आप कवर करती हैं, तो पाकिस्तानी शादियों को कवर करती हैं या और लोगों की भी, दूसरे लोगों की भी करती हैं?
मल्टी कल्चरल है, पाकिस्तानी भी काफ़ी हैं, इंडियन शादियां भी होती हैं वो भी कवर कर लेती हूँ, जो यहाँ पे लोकल लोग हैं उनकी भी शादियां हम लोग कवर करते हैं।
तो फोटोग्राफी का सवाल फिर एक तरफ, तनवीर हैं DI खान से, वो भी आपके लिए कोई सवाल? लेकिन लोग कह रहे हैं कि नहीं, उनकी तो कॉल ड्रॉप हो गई है। तो हाँ, कुछ जो आप कह रही थी कि क्या तकरीबात में क्या फ़र्क होता है, आपने अगर देखा कि जो, नहीं जी गुलरुख कह रही नहीं सवाल नहीं चलेगा। मुरीद खान मियां वाली से हमारे साथ हैं। मुरीद खान साहब जी, क्या सवाल है आपका सितारा खान से?
सलाम अलैकुम जनाब, मैं अर्ज करना चाहता हूँ, कब फिर से बात कर रहा हूँ। तो ये जो औरतें गाड़ी चला रही हो ना, तो एक्सीडेंट हो जाए तो वो बहुत परेशान हो जाती हैं, तो वहाँ भी अमेरिका में भी इस तरह होता है?
कौन परेशान हो जाता
है? लोग जो गाड़ी चला रहे होते हैं। यहाँ पे परेशानी की बात होती है अगर चोट लग जाए, वरना यहाँ पे हर गाड़ी इंश्योर्ड होती है, बगैर इंश्योरेंस के आप गाड़ी बाहर नहीं लेके जा सकते हैं। तो परेशान इसीलिए कोई होता नहीं है, इसीलिए यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। बस अपनी इंश्योरेंस की जो डिटेल्स होती हैं वो दो लोगों में हम एक्सचेंज होती है और उसके बाद फिर इंश्योरेंस वाले आपकी गाड़ी मरम्मत करके आपको वापस दे देते हैं।
फिदा मोहम्मद एबटाबाद से हमारे साथ टेलीफोन पर मौजूद है। जी फिदा मोहम्मद साहब।
मैडम अस्सलाम वालेकुम। जी जी फिदा हो रहा हूँ, मेरा, मैं असल में, मैं भी काजी के साथ जो डैम बना हुआ है उसका विलेज का इफेक्टिव हूँ, टोपी के साथ ही है मेरा गांव, तो एबटाबाद शिफ्ट हो गया। मेरे सवाल सारा बीबी से ये पूछना है कि ये जो शादी ब्याह की जो ओकेजन में इनके वो फोटोशॉट लेती है, तो मैंने पूछना यह कि जो मल्टी कल्चरल वो वहाँ पे मामला है, तो हमारे पाकिस्तान में और इंडिया में जो बेसिक जो कल्चर होते हैं, मुख्तलिफ रसूमात होती हैं उसमें और वहाँ की बिजी लाइफ में कोई फर्क है? वहाँ पे जो नेचुरल, जो हमारे पाकिस्तानी इंडियन जो लोग वहाँ पे शादी होटल में होती है, तो वो मेहंदी वगैरह की, चावल फेंकना और मामला, तो
वो तमाम रसूमात, सितारा बताइए कि क्या सब वो रसूमात यहाँ भी चलती है जो पाकिस्तान और इंडिया में चल रही होती है?
बिल्कुल होती है, हमारी शादियाँ यहाँ पे बहुत कलरफुल और बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन जो यहाँ पे अमेरिकन शादियाँ होती है वो एक दिन की होती है, बाकी हमारी वही 3 दिन मेहंदी का प्रोग्राम चल रहा है और फिर उसके बाद बारात है, फिर वलीमा है, उससे पहले संगीत के प्रोग्राम्स चल रहे हैं, माइयों हो रही हैं, ढोलकियां हो रही हैं, तो हमारा 10-10 दिन का शादी का प्रोग्राम
चलता है। जी यहाँ भी पाकिस्तान और इंडिया बना लेते हैं लोग। अच्छा, सनाउल्ला बलोचिस्तान से हमारे साथ हैं, वो उनसे पूछते हैं, वो क्या पूछना चाह रहे हैं? जी सनाउल्ला साहब।
मैडम क्या हाल है, खैरियत?
अल्लाह का शुक्र, बेहद शुक्रिया आपका कॉल करने का।
आपके मेहमान सवाल है, जो ड्राइविंग के बारे में बात कर रहा था पहले, वो मैं सवाल ये कि उधर अमेरिका में और कोई पाकिस्तानी ड्राइविंग करे तो उसका टाइम फंक्शन होगा या पाकिस्तान?
क्या जरा दोहराइए सवाल।
मैडम अगर कोई पाकिस्तानी उधर अगर वो गाड़ी चलाए, मतलब उसका तनख्वा पाकिस्तान कितना होगा?
क्या चलाए?
गाड़ी, जो गाड़ी टैक्सी मैक्सी कोई,
तो
उसका तनख्वाह पाकिस्तान कितना होगा मैडम?
अच्छा, टैक्सी चलाए तो उसकी तनख्वाह कितनी होगी सितारा?
डिपेंड करता है कि आप कितने घंटे टैक्सी चलाते हैं. यहाँ से लोग जो हैं दिन के $100 भी बनाते हैं और दिन में $500 भी बना सकते हैं. तो डिपेंड करता है कि आप कितना कितनी मेहनत से काम करें.
काम कर अताउर रहमान मालाकंड से हमारे साथ हैं. जी अताउर रहमान साहब.
हेलो जी मैडम, हम आपको सलाम देते हैं.
वालेकुम सलाम. वालेकुम सलाम. सवाल आपका.
हमारा सवाल ये है कि हम खुद ड्राइवर है, पाकिस्तान में हम ड्राइवरी करते हैं, वहाँ हमारे से ये पुलिस रिश्वत लेते, तो अमेरिका में ये कानून है कि नहीं, वहाँ रिश्वत नहीं चलते?
रिश्वत का कौन सा कानून होता है?
नहीं कानून तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये है कि जब यहाँ पे पुलिस आपके पास आती है तो उनकी सारी गुफ्तगू रिकॉर्ड हो रही होती है, तो यहाँ पे कोई गुंजाइश भी नहीं है कि यहाँ की पुलिस आपसे रिश्वत ले.
अच्छा बेहद शुक्रिया. टेलीफोन कॉलें बहुत आ रही हैं, गुलरुख थक गई हैं कॉलें लेते लेते. तो एक सवाल फेसबुक का रह गया था, मोहम्मद हुसैन ने पूछा था कि सितारा खान आप अमरीका में पाकिस्तान के लिए क्या कर रही हैं और क्या कर सकती हैं?
मैं देखिए ना जी, मैं यहाँ पे लेडीज के लिए हेल्प कर रही हूँ कि यहाँ की जो हमारी पाकिस्तानी खातून हैं उनको अपने आप को वो पैरालाइज ना समझें और वो गाड़ी चलाएं और अपने दिन भर के जो काम है वो कर सकें.
नहीं वो पूछ रहे हैं कि आप क्या करती हैं पाकिस्तान के लिए, आप जो यहाँ पर मौजूद हैं, आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया?
मैंने पाकिस्तान के लिए क्या किया? गुड क्वेश्चन. मैंने पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हूँ मैं यहाँ पे बैठ के, जो यहाँ पे अमरीकी खातून करती है उनके शाना बशाना चल रही हूँ. और ये प्रूव करी कि हम पाकिस्तानी औरतें पीछे नहीं रह सकती, हमने रह भी नहीं, हम पीछे नहीं रहेंगे.
हाँ क्योंकि बहुत से हमने कुछ इंटरव्यूज किए थे फेसबुक सॉरी प्रोग्राम में, जो यस एक्सचेंज स्टूडेंट्स आते हैं तो उनसे अक्सर लोग ये सवाल पूछते थे कि क्या पाकिस्तान में गाड़ियाँ होती हैं. तो आज के प्रोग्राम में हम सुनने वालों को ये पता लग रहा है कि न सिर्फ ये कि पाकिस्तान में गाड़ियाँ होती हैं बल्कि वहाँ के जो गाड़ियाँ चलाने वाली ख़वातीन हैं वो यहाँ आकर गाड़ियाँ चलाना सिखाती हैं और हज़ारों लोगों को सिखा चुकी हैं और हज़ारों लोगों को सिखाने का इरादा रखती हैं. और वो ये बता रही हैं कि पाकिस्तान की ख़वातीन जब किसी शोबे में आगे बढ़ती हैं तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता, उनके टैलेंट को कोई दबा नहीं सकता. और उसकी सितारा खान हमारी आज उसकी एक मिसाल है. तो जो आप जो ख़वातीन इस वक्त हमारा प्रोग्राम सुन रही हैं उनको कुछ थोड़ी सी मुख्तसरन अपनी कहानी बताइए सितारा खान, कि आपने अपनी ज़िंदगी में इतनी इस मकाम तक पहुँचने के लिए क्या जद्दोजहद की और क्यों की?
जद्दोजहद इसलिए की कि आई वॉन्टेड टू बी समवेयर. मैं अगर पीछे मुड़ के देखूँ तो मुझे ये ना लगे कि मैंने पीछे कुछ किया ही नहीं और यहाँ तक मतलब कैसे पहुँचे. राइट, तो पीछे मुड़ के देख के अच्छा लगता है कि मेरा जो हार्ड वर्क था जो मेहनत थी वो अल्हम्दुलिल्लाह रंग लाई.
और क्या कहना चाहेंगी वो खवातीन जो कदामत पसंद घराने, आपका ताल्लुक कदामत पसंद घराने से था लेकिन इसके बावजूद आपने स्ट्रगल की और आपने तमाम जो रसूमात थीं या जो क्यूद थी आम जिंदगी में माशरे पर पाकिस्तान में जैसे कि होती हैं उनको तोड़ के आप यहाँ तक पहुँची, तो क्या कहेंगी उन खवातीन से, उन बच्चियों से जो ऐसे घरानों से जिनका ताल्लुक है जिनको कोई इजाज़त नहीं बाहर निकलने की खासतौर पर गाड़ियाँ चलाने की, तो क्या पैगाम देंगी आप उनको इस वक्त?
मैं उनको प्रमोट करूंगी कि बिल्कुल मतलब गाड़ी चलाने बहुत ज़रूरी होती है और आजकल के दौर में तो बहुत ज़रूरी हो गया है. बच्चे हैं हमारे आगे से, उनको स्कूल ले जाना, उनके लिए काम करना, फिर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, हर खातून को इंडिपेंडेंट होना चाहिए.
और उनके घर वालों के लिए क्या पैगाम?
उनके घर वालों के लिए ये पैगाम है कि प्लीज़ उनके ऊपर भरोसा रखें, उन पे ट्रस्ट करें और उनको करने दें काम
करने दें
ताकि, क्योंकि वो हाथ बटाएंगे आप लोगों का.
बिल्कुल, अगर घर की कोई खातून, घर की कोई लड़की कुछ तालीम हासिल करती है और आगे बढ़ती है तो एक घराना पूरा आगे बढ़ता है और उसके आने वाली नस्लों को वो आगे बढ़ा कर रखती है. तो इसके लिए खुदा के लिए आप अपनी घर की खवातीन को इजाज़त दें कि वो तालीम हासिल करें, उनको इजाज़त दें कि वो जॉब कर सकें, उनको इजाज़त दें कि वो बिज़नेस कर सकें और उनको इजाज़त दें कि वो गाड़ियाँ भी चला सकें और
चलाएँ.
बेहद शुक्रिया सितारा खान, आज के प्रोग्राम को समेटने का वक्त हुआ, आपका बेहद शुक्रिया अदा करते हुए इजाज़त चाहते हैं. और अपने सुनने वालों को बता दें कि फेसबुक पर हमने एक फेसबुक कॉर्नर अब शुरू कर रहे हैं हरदम रवायत ज़िंदगी के फेसबुक पेज पर, जिसकी निगरानी कर रही है हमारी इंटर्न मारिया नासिर. वो आपकी तमाम सवालात इकट्ठे करेंगी और वो पहुंचाएंगी हमारे मेहमानों तक और उनके जवाब हासिल करेंगी. तो आप हमारे फेसबुक पेजेस पर नज़र रखिएगा इस कॉर्नर के लिए. और इस वक्त हमें प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.
खुदा हाफिज़. थैंक यू वेरी मच.
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन के प्रोग्राम हरदम रवा है जिंदगी में हमारी आज की मेहमान थी अमरीकी रियासत वर्जीनिया में ड्राइविंग की तरबियत देने और ड्राइविंग लाइसेंस देने और दिलवाने वाले एक इदारे द स्टार ड्राइविंग स्कूल की मालिक और एक माहिर ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर सितारा खान.
جو گزشتہ 14 سال سے ہزاروں لوگوں کو ورجینیا کی سڑکوں پر گاڑی چلانے کے لیے انہیں ڈرائیونگ لائسنس دلوانے میں ایک اہم کردار ادا کر چکی ہیں اور ایک اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ ہماری مہمان ستارہ خان ایک پروفیشنل فوٹوگرافر اور ایک فوٹو اسٹوڈیو ایس کے اسٹوڈیوز کی مالک بھی ہیں اور یہاں ورجینیا، میری لینڈ اور واشنگٹن ڈی سی میں مختلف سماجی، خصوصی طور پر شادی بیاہ کی تقریبات کے موقع پر فوٹو شوٹس بھی کرتی ہیں۔ اور سوابی پاکستان سے تعلق رکھنے والی اور یہاں ورجینیا میں گزشتہ 16 سال سے مقیم ہماری مہمان ستارہ خان پشاور یونیورسٹی کے آئی ٹی کے شعبے سے ہارڈ ویئر انجینئرنگ کی ڈگری ڈسٹنکشن کے ساتھ حاصل کرنے والی پہلی خاتون بھی ہیں۔